नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के तीन मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिन तीन मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी उन्हें बहाल कर दिया गया है। इसे लेकर विपक्ष फिर हमलावर हो गया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति मुइज्जू के संसदीय संबोधन से बहिष्कार कर दिया है। मालदीव के दो मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेट्स पार्टी आज यानी सोमवार को संसद में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भाषण में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। एमडीपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन डेमोक्रेट्स की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों की बहाली के कारण वो इस बैठक से दूर रहेंगे। विपक्षी दलों ने मुइज्जू सरकार पर भारत विरोधी सोच का आरोप लगाया था। इन दलों ने भारत को पुराना सहयोगी बताते हुए कहा कि भारत को अलग करना मालदीव के विकास पर असर डालेगा। बता दें कि मालदीव की संसद में आज राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भाषण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मालदीव के तीन मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। भारत की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। भारत में मालदीव का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने मालदीव की बुकिंग रद्द करा दी। सोशल मीडिया पर भी लोगों को मालदीव न जाने की अपील हुई है। भारत के दबाव के कारण तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि अब तीनों को बहाल कर दिया गया है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तनाव का कारण बना हुआ है। हमास को कुछ अन्य आतंकी संगठनों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, लेकिन अब उसके लिए इसराइल ने धमकी दे दी है। इसराइली सेना ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह उसे उकसाता है तो फिर इसराइल हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला देगा। ऐसे में अब ये तय है कि इसराइल जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह पर हमला कर सकती है। इसराइली सेना द्वारा हिजबुल्लाह को दी गई ये चेतावनी हिजबुल्लाह के लिए आने वाली मुसीबत का संकेत भी दे रहे हैं। इसराइली सेना हमास के खिलाफ पिछले चार महीने से जारी युद्ध के दौरान उत्तरी सीमा में हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जिक्र किया है। इसराइली सेना ने भी स्वीकार किया है कि सीरिया में उसने कई हवाई हमले किए थे। इस मुद्दे पर इसराइली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि युद्ध हमारी पहली प्राथमिकता तो नहीं है, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां हिजबुल्लाह होगा वहां वहां हम हमले करते रहेंगे। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि जो लेबनान के लिए सही है वही सीरिया के लिए भी सही है, और यही बात ज्यादातर स्थानों के लिए सही है, वरना उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने भी बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हमास के खिलाफ सीज फायर का मतलब ये नहीं कि इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कोई हमला नहीं करेगा। वहीं इस मामले में हमास के एक टॉप लेवल अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि वो मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, और इसराइल भी स्थायी सीज फायर समेत कई मुद्दों पर अपनी स्वीकृति भी दे रहा है। बता दें कि इसराइल हमास के बीच युद्ध में अब तक करीब 27,238 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा 66,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इसके चलते गाजा की करीब 85% जनता भी वहां से विस्थापित हो गई है, और इजरायली सेना के हमलों में पिछले 24 घंटे में 107 लोगों की मौत हुई है। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है। चिली के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरे मध्य और दक्षिण चिली में लगी आग में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। वाइल्ड फायर की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है। रेस्क्यू टीमें एहतियात के तौर पर जले हुए घरों की तलाशी ले रही हैं। जानकारी के मुताबिक जंगल में लगी आग फैलती जा रही है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। भयानक आग को देखते हुए चिली की सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। चिली की गृहमंत्री कैरोलिना तोहा ने बताया कि वर्तमान में देश के बीच और दक्षिण के 92 जंगल आग की चपेट में है, जहां इस हफ्ते तापमान असामान्य रूप से ज्यादा रहा है। जंगलों में लगी भीषण आग के घनी आबादी वाले इलाके में फैलने से लगभग 1100 मकान जलकर खाक हो गए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।